स्वागत है आपका दिन भर में, मैं हूँ इकबाल अहमद। तारीख 5 दिसंबर और दिन गुरुवार। आर्थिक सुस्ती को लेकर पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने मोदी सरकार पर किया हमला।
8 to 7 to 6.6 to 5.8 to 5 and 4.5।
कर्नाटक की 15 सीटों पर हुए उपचुनाव, जीत को लेकर बीजेपी आश्वस्त।
हमको चाहिए 8 सीट, वैसा हमें विश्वास है कि मिल जाएगा 10 सीट के ऊपर। तो ये जो सरकार है ये अगले 3-3.5 साल एकदम आराम से चलेगा।
छत्तीसगढ़ के साकेगुड़ा गांव में क्या कहा आम लोगों ने?
वहाँ सर बीज त्यौहार चल रहा था, चर्चा चल रहा था, पूरा पुलिस ने घेर के गोली चलाया गया, वहाँ नक्सली नहीं थे, कोई नहीं।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि मौजूदा सरकार की गलतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है। चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया से जुड़े एक मामले में 106 दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक लड़की को 5 अभियुक्तों ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। हमलावरों पर लड़की से सामूहिक बलात्कार का भी आरोप है। ये हमला तब हुआ जब लड़की कोर्ट में अपने मामले की सुनवाई के लिए जा रही थी। पीड़िता अभी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। इससे कुछ दिनों पहले हैदराबाद में भी एक लड़की से बलात्कार के बाद उसे जिंदा जला दिया गया था। इन अपराधों से भारत में बेहद खौफ और गुस्से का माहौल है। फ्रांस में देशव्यापी प्रदर्शनों की वजह से सामान्य जनजीवन बाधित है। वहां के लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रस्तावित यूनिवर्सल रिटायरमेंट सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि रिटायरमेंट के नए नियमों की वजह से लाखों लोगों का वेतन कम हो जाएगा। फ्रांस के सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक के नेता फिलिप मार्टिनेज ने एक फ्रेंच टीवी चैनल से कहा कि सरकार के साथ बातचीत की उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं।
Depuis le 13 septembre, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on les a écoutés?
पेरिस ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारी पिछले 13 सितंबर से धरने पर हैं। तब से लेकर अब तक क्या बदला है? क्या किसी ने उनकी बात सुनी? कुछ नेताओं ने उनसे बात जरूर की, लेकिन वो काफी नहीं था। इसलिए हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों की संख्या भी बढ़ाएंगे। ये थे फ्रांस ट्रेड यूनियन के नेता फिलिप मार्टिनेज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पोलैंड में आपातकालीन कर्मियों ने एक घर के मलबे से 8 लोगों के शव निकाले हैं। ये 3 मंजिला घर एक संदिग्ध गैस धमाके में नष्ट हो गया था। बुधवार शाम को हुए इस धमाके में घर के 4 वयस्कों और 4 बच्चों की मौत हो गई थी। माना जा रहा है कि विस्फोट गैस लीक होने की वजह से हुआ। 8 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए साइलिजियान क्षेत्र के गवर्नर जेरोस्ला येचोरेक ने कहा कि बचाव दल अब भी अपनी तलाश जारी रखे हुए है, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी को जिंदा बचा लेने की उम्मीद है।
Z bólem muszę przekazać kolejną smutną informację. Została odnaleziona 6. ofiara.
मेरा दिल भारी है, लेकिन मुझे एक दुखद समाचार देना है। इस हादसे के बाद हमने 8 लोगों के शव बाहर निकाले हैं। तलाशी अभियान अब भी चल रहा है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें भरोसा है कि ये ऑपरेशन किसी चमत्कार के साथ पूरा होगा। ये थे पोलैंड के गवर्नर येचोरेक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी का कहना है कि मॉरिटेनिया तट के पास नाव पलट जाने से कम 58 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संस्था के मुताबिक ये नाव एक हफ्ते पहले जाम्बिया से महिलाओं और बच्चों समेत 150 प्रवासियों को लेकर निकली थी। हादसे में सुरक्षित बचे लोगों ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि जब नाव मॉरिटेनिया तट के पास पहुंची तब तक उसका ईंधन काफी कम हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जंगलों में लगी आग अब तक नहीं बुझ सकी है। इस आग के धुएं ने ब्रिस्बेन और सिडनी जैसे शहरों को पूरी तरह ढक रखा है। वहीं न्यू साउथ वेल्स के अधिकारियों का कहना है कि यहां अब तक सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दर्ज किया गया है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका दिन भर में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है दिसंबर की 5 तारीख और दिन है आज गुरुवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से। आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में 106 दिनों तक जेल में बंद रहने के बाद चिदंबरम कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहा होने के बाद आज वो संसद भी गए और पत्रकारों से भी कांग्रेस दफ्तर में मुलाकात की। चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है और जीडीपी लगातार घट रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं और सब कुछ अपने मंत्रियों पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को पता ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था में आखिर गड़बड़ी कहाँ और क्या है। सुनिए फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
3 माह के बाद जेल से बाहर आए पूर्व वित्त मंत्री के लबो लहजे में किसी धार की कमी नहीं थी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार के लिए उसी विषय को चुना जिस पर वो कई तरफ से घिरी नजर आ रही है।
इट इज अनएबल टू लुक फॉर द ऑब्वियस क्लूज बिकॉज इट इज स्टबर्न एंड म्यूलिश इन डिफेंडिंग इट्स कैटास्ट्रोफिक।
वो सामने मौजूद संकेतों को भी साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो अपनी विनाश लाने वाली गलतियों जैसे नोटबंदी, जीएसटी को गलत तरीके से लागू किए जाने, टैक्स टेररिज्म और सभी फैसले को प्रधानमंत्री कार्यालय में निहित करने जैसे निर्णयों का बचाव करने का हट लेकर बैठे हैं। पी चिदंबरम ने पहले ही कहा था कि वो इस समय के सबसे गंभीर मुद्दे पर बोलने जा रहे हैं। उनका कहना था कि बीमारी को ठीक करने के लिए रोग की पहचान जरूरी है और अगर वो गलत होगा तो बीमारी को ठीक करने का नुस्खा भी गलत होगा जो घातक भी हो सकता है। पूर्व वित्त मंत्री का कहना था कि उन्होंने जो कहा है उस पर पूरी तरह से ध्यान देकर उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। जीडीपी के गिरते दर पर उनका कहना था कि आने वाले दिनों में ये 5 तक भी पहुंच जाए तो ये किस्मत की बात होगी।
8 to 7 to 6.6 to 5.8 to 5 and 4.5 8 to 7 7 to 6.6
फिर 5.8 से 5 और फिर 4.5 की जीडीपी दर। ये हैं मोदी सरकार के अच्छे दिन। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि पी चिदंबरम ने कोर्ट द्वारा जमानत के लिए लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है।
भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर पिछले 105 दिन केस के चलते जेल में रहना पड़ा। बेल देते समय कोर्ट ने कहा था कि आप केस पर कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन चिदंबरम जी ने आज स्टेटमेंट दिया कि माय रिकॉर्ड एज मिनिस्टर इज वेरी क्लियर। यही तो आरोप है।
ईडी ने एक मामले में कांग्रेस नेता पर 9 लाख रुपयों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
और दिल्ली के बाद अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 9 जिले में रेप पीड़ित एक लड़की को अभियुक्तों ने जिंदा जलाने की कोशिश की। गंभीर हालत में लड़की को लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां से उसे अब दिल्ली लाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में नामजद 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है। पूरी जानकारी के साथ समीर आदमत मिश्र।
उन्नाव में रेप पीड़ित लड़की रेप के मुकदमे के सिलसिले में रायबरेली जा रही थी लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही अभियुक्तों ने उसे खत्म कर देने के मकसद से पकड़ लिया और पेट्रोल डालकर लड़की को आग के हवाले कर दिया। कुछ राहगीरों की मदद से वो पुलिस तक पहुंची और फिर अस्पताल। लड़की की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्नाव के जिला अस्पताल से उसे तुरंत लखनऊ के सिविल अस्पताल भेज दिया गया लेकिन अब सिविल अस्पताल से भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है ताकि लड़की को समुचित इलाज मिल सके। घटना के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर आला अफसर उन्नाव पहुंचे और घटना की जानकारी ली। लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक एसएन सावंत ने बीबीसी को बताया,
वहां पे ऐसी सूचना मिली थी कि 5 लोगों के द्वारा उसे बर्न करने की कोशिश की। आपको पता होगा एक पुराने केस इनके द्वारा दर्ज किया गया था जो जनपद रायबरेली में थाना लालगंज में इन्वेस्टिगेट हुआ था और उसमें 2 एक्यूज थे, उनके विरुद्ध की गई थी। उसमें से जो एक्यूज जेल में था वो भी हाल में छूट के भी आया था। 5 लोगों को इन्होंने नामजद किया था, उसके आधार पर पुलिस ने तत्काल दबिश करके 4 आदमी को अपने कस्टडी में ले रखा है और 1 आदमी और शेष है जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसमें पकड़ने के उसको भी प्रयास किया जा रहा है और पूरी तहकीकात की जा रही है।
घटना उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र के एक गाँव में हुई। पुलिस के मुताबिक घटना में वह व्यक्ति भी शामिल था जिसके खिलाफ लड़की ने कुछ समय पहले रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्य अभियुक्त अभी कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूट कराया था। और लड़की के परिजनों की माने तो वो लगातार उन्हें केस वापस लेने की धमकी दे रहा था। पुलिस का कहना है कि संबंध में परिजनों ने कोई लिखित शिकायत नहीं की थी, लेकिन लड़की के पिता का कहना है कि धमकी आए दिन मिल रही थी।
कम से कम दसियों बार धमकी मिल जाती है। घटना करे बड़े मार पीट का यहाँ रास्ता देते हैं।
सिविल अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक उसके शरीर का 90% हिस्सा आग में झुलस चुका है। गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल के डॉक्टरों ने लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाने की सलाह दी है। लड़की को एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली भेजने की तैयारी हो रही है। इस बीच इस मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर ट्विटर के जरिए सवाल उठाया है तो समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है।
महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएं, लोगों को भय लगने लगे कि उनका जीवन सुरक्षित रहे, आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम ये मानेंगे कि संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है नहीं चल पा रही है। और जब संविधान के अनुसार कोई सरकार नहीं चलती है तो उसका उपाय भी संविधान में किया गया है कि तब भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत उस सरकार को बर्खास्त करके शासन अपने हाथ में लेना।
वहीं उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
आरोपियों ने उसे जान से मारने के लिए जला करके हत्या करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन लड़की चूंकि अभी जिंदा है और उसने अपने बयान दिए हैं तो दोषी है। मैं अपेक्षा करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ऐसे दोषियों को फांसी से।
उन्नाव में इससे पहले भी रेप पीड़ित एक लड़की को कथित तौर पर ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश हो चुकी है। इस मामले में स्थानीय विधायक कुलदीप सेंगर समेत कुछ अन्य लोग जेल में बंद हैं। पीड़ित लड़की महीनों अस्पताल में भर्ती रहने के बाद अभी कुछ दिन पहले ही घर वापस आई है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
और अब चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक विधानसभा की 15 सीटों के लिए उपचुनाव में 61% वोटिंग हुई। सदन में बीजेपी सरकार की बहुमत बनी रहे इसके लिए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत अहम है। 224 सीटों वाली विधानसभा में इस समय बीजेपी के पास 105 सीटें हैं और बीजेपी को कम से कम 8 सीटें जीतना जरूरी है। बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस और JDS का भी दावा है कि वो कम से कम 9-10 सीटें जीतेंगी। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कर्नाटका के 38 लाख मतदाताओं के फैसले से ही तय होगा कि राज्य में बीजेपी की सरकार चलेगी या नहीं। 2008 में हुए उपचुनाव ने भी बीजेपी सरकार को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार अगर BS येडियुरप्पा की बीजेपी सरकार 8 सीट से कम जीती तो उनकी सरकार सत्ता में नहीं रह सकेगी। हर किसी को पता है कि ये उपचुनाव साधारण नहीं है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बहुत उत्साहित हैं।
10 to 12 seats out of 15,
हम 15 में से 10 से 12 सीट तो जीतेंगे। हाँ, जाहिर है कि बीजेपी सरकार गिरेगी ही। ये थे कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के शब्द। लेकिन सिद्धरामैया ये नहीं कह सके कि अगर बीजेपी सरकार गिर गई तो क्या कांग्रेस फिर से जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन सरकार बना पाएगी या नहीं। उन्होंने स्पष्ट तौर से कह दिया कि वो फैसला कांग्रेस की आला कमान ही लेगी। दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर बमन आचार्य का कहना था,
सरकार तो जरूर रहेगी, अभी हमको चाहिए 8 सीट। वैसा हमें विश्वास है कि 10 के ऊपर मिल जाएगा, 10 सीट के ऊपर तो ये जो सरकार है ये अगले 3-3.5 साल एकदम आराम से चलेगा, क्योंकि ये छोड़ के और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं लोगों के सामने। और आगे 2-3 साल के लिए इधर सरकार रहना चाहिए और उसको एक स्थिरता चाहिए, इतना ही लोगों का और हमारा भी अपेक्षा है।
दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी रही। ऐसी रिपोर्टें हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत से काम नहीं किया, क्योंकि इस बार लड़ने वाले उम्मीदवार पिछले चुनाव में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की ओर से चुनाव लड़े थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रचार किया था। और कांग्रेस में DK शिवकुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़कर कई नेताओं ने चुनाव प्रचार सिद्धरामैया के हवाले छोड़ दिया था। उनकी शिकायत थी कि सिद्धरामैया ने उम्मीदवारों पर उनसे चर्चा नहीं की, हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धरामैया के सलाह से सहमत थी। दरअसल कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के नेता अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर कहते हैं कि चुनाव के नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, यानी कोई भरोसे से नहीं कह रहा है कि नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अब चलते हैं झारखंड। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रचार खत्म हो गया। वहां 7 दिसंबर यानी शनिवार को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें जमशेदपुर पूर्वी की सीट भी शामिल है। यहां से मुख्यमंत्री रघुवर दास मैदान में हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं। एक समय में उनके ही मंत्री रहे सरयू राय, जो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के गौरव वल्लभ भी मैदान में है उसी सीट से और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे चलते हैं जमशेदपुर, जहां मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार। रजनीश, ये बताएं कि किन मुद्दों पर जो है दूसरा चुनाव होने की ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है, दूसरे चरण का जो मतदान है जो परसों होगा।
इकबाल जी, मैं अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास के घर के ठीक सामने खड़ा हूं और दूसरे चरण में 20 सीटों पे मतदान होना है 7 तारीख को। और इसमें जो 20 सीटें हैं उनमें से जो 8 सीटें हैं वो जेएमएम के पास है और 8 सीटें बीजेपी के पास है, 2 सीटें आजसू के पास है, 2 सीटें अन्य के पास है। तो जो कुल्हान प्रमंडल है, कुल्हान प्रमंडल में 14 सीटें हैं और जो 6 सीटें हैं वो छोटा दक्षिणी छोटा अनाकपुर प्रमंडल में है। तो कहा जाता है कि जो कुल्हान प्रमंडल है वहां पे जेएमएम का वर्चस्व है और 2014 के नतीजों को देखें तो वहां पे जेएमएम ने 8 सीटें जीती थी। तो इस बार बीजेपी के लिए चुनौती तो बड़ी है और रघुवर दास के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी है, पहली बार कोई सरकार 5 साल रही है। और रघुवर दास के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें 5 साल में रघुवर दास ने दोस्त से ज्यादा दुश्मन बनाए हैं, ये बातें अक्सर कही जा रही है। मुद्दों की बात करें तो मुद्दे कई हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन आम लोगों के बीच जाए तो इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। बात हो रही है तो व्यक्तियों के नाम पर बात हो रही है, पार्टी के नाम पर बात हो रही है, प्रधानमंत्री को लेकर बात हो रही है। तो अगर आप मुद्दों के आधार पर कोई मोबिलाइजेशन है या लामबंदी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है। जहां तक जमशेदपुर पूर्वी सीट की बात है तो यहां पर कहा तो जा रहा है कि सरयू राय हैं जो कि बीजेपी के अभागी नेता हैं और वहां जहां से रघुवर दास हैं पूर्वी यहां से वो 25 साल विधायक रहे हैं, पिछले 5 चरण से लगातार वो जीतते रहे हैं
जी।
बागी बनकर सरयू राय चुनौती तो दे रहे हैं लेकिन चुनौती कितनी तगड़ी होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये लोग खुले तौर पे कह रहे हैं कि जो मुकाबला है वो दो तरफा है जिसमें कि सरयू राय और रघुवर दास के बीच टक्कर है। गौरव वल्लभ एक लोकप्रिय प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर आए हैं लेकिन वो कितनी टक्कर दे पाएंगे ये अभी कुछ भी कहना
बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड से ही अब सटे राज्य उसके छत्तीसगढ़ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सारके गुड़ा में साल 2012 में हुए कथित मुठभेड़ में 17 गांव वाले मारे गए थे। उस समय पुलिस ने कहा था कि माओवादियों से उनकी मुठभेड़ हुई थी और मारे जाने वाले सभी नक्सली थे। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और छत्तीसगढ़ की रमन सिंह की बीजेपी की सरकार थी और दोनों ही इसे अपनी अपनी कामयाबी बताते हुए अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे थे। लेकिन इसकी जांच करने वाली न्यायिक आयोग ने अब अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मारे जाने वाले नक्सली नहीं बल्कि आम नागरिक थे और ये एक फर्जी मुठभेड़ थी। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी पहुंचे उसी गांव में और लोगों से बात की।
मैं इस वक्त कोटा गुड़ा गांव में हूं, सारके गुड़ा के, जहां पर फायरिंग में 2012 के जून महीने में 17 ग्रामीण मारे गए थे जिसमें से कई नाबालिग बच्चे भी थे और उनमें एक थी 8 साल की सरस्वती, जो छोटी सी बच्ची थी। यहाँ पर 2 मकबरे बनाए गए हैं, ये इनकी समाधियाँ बनाई गई हैं मड़काम सुरेश और मड़काम नागेश की। कुछ गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर। उस दिन आप थे क्या यहाँ पर, कुछ क्या हुआ था, कुछ पता है?
वहाँ सर बीज त्यौहार चल रहा था, चर्चा चल रहा था, पूरा पुलिस ने घेर के गोली चलाया गया। वहाँ नक्सली नहीं थे, कोई नहीं थे।
घटना पीछे हुई थी ना, वो पेड़ जो है,
पेड़ जहाँ है ना सर मैदान में वही पर हुआ है,
वो जो पीछे नजर आ रहा है
जी वही पर, जहाँ वहाँ ध्यान रखे सर वही पर हुआ।
अब पीछे में जो एक और ये जो समाधि बनी है ये भी उन्हीं में से सब लोगों की है जो मारे गए। इनमें से ये 2 महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपना पति खोया है, ये बच्चे हैं जिनके पिता नहीं रहे। क्या हुआ था उस दिन, आप थी, क्या देखा आपने उस वक्त, क्या हो रहा था?
नक्सली रेंजर कैप्टन मासूर की नोस मंगाओ की मंज हम जानते थे नाव की मंज नक्सली रही और जानते नाट एंड जानता बीज पांडु पूरी मातूर
नक्सली है करके आम जनता को मार के ले गई बोल रहे सर।
माँ नौकरी बात है इतका उसका पिल्ला बात किता
सर, वो बोल रही है अपने पति लोग मर गए।
उस दिन रात में क्या हुआ था, ये घर में थी क्या, पूछिए।
वो बोल रहे है सर रात में बीच त्यौहार हो रहा था, पूरा घेर के गोल चला गया बोल रहे हैं सर।
घर के अंदर भी घुसी थी पुलिस क्या?
इस वेलत नहीं माँ,
इतना समय घुसे बोल रहे हैं सर।
जमा तुंगी मंज आता ना था,
जमा करके ताना में ले गए बोल रहे सर।
गांव के लोग
जी अंदर डाल के बोले मैंने सर, नक्शे लिहाई करके बोले मैंने आम जनता को।
ये कह रहे हैं कि यहाँ से पलायन करके चले गए थे, माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उससे बचने के लिए लोग यहाँ से भागकर दूसरी जगहों पर चले गए थे, कुछ आंध्र प्रदेश चले गए थे, लेकिन बाद में भरोसा दिलाकर यहाँ लाकर बसाया गया था। फिर क्या हुआ?
गांव छोड़कर नहीं जाए करके फिर से आके बसे थे। ऐसी मीटिंग पूरा गांव वाले बैठे थे, का वो बीज त्यौहार का चर्चा करके सब तीन गांव वाले मिल के कर रहे थे। उस समय पुलिस लोग घेर के गोले चला गए।
अंधेरा था?
अंधेरा था।
बोले कि पुलिस को भी गोली लगी है?
क्या है लगे क्या है को मालूम सर, पुलिस को तो वहाँ उन्हीं उन्हीं लोग आपस में उन्हीं उन्हीं का गोले लगा है सर वहाँ।
बस निवेदन करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले जाए।
जो मर गए वो तो मर गए, जो घायल हुए उनके जिस्म पे जख्म है, लेकिन बाकी के जो लोग बचे हुए हैं उनके अंदर ऐसे घाव लगे हुए हैं जो कभी भर नहीं सकते। सलमान रावी, कोटा गुड़ा, बीजापुर।
बीबीसी हिंदी रेडियो का दिन भर कार्यक्रम आप 25, 31 और 49 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर भारतीय समय के मुताबिक रोजाना शाम 7:30 से 8 बजे तक सुन सकते हैं। हमारे सभी रेडियो कार्यक्रम आप bbchindi.com पर लाइव भी सुन सकते हैं।
और अब चलते हैं, बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में सरकार की नई पेंशन स्कीम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी बंद के कारण पूरा फ्रांस करीब करीब ठप पड़ गया है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, रेल और मेट्रो सेवाएं बाधित हैं, सैकड़ों विमान उड़ान नहीं भर सके हैं। पेरिस की सड़कों पर मौजूद एक महिला ने बीबीसी से बातचीत में ये कहा।
Donc pas de métro en arrivant ici, mais bon, ça a été un portant de bonheur, ça a été. J'ai mis les chaussures de marche.
Anna मारेम्बर्ट कह रही हैं कि मैंने लाइन ए की ट्रेन पकड़ी क्योंकि मेट्रो सेवा बंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, मैंने अपनी वॉकिंग शूज़ मैंने अपने पहन रखे थे। और इस बारे में बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवेश रणवीर नैयर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। रणवीर साहब, आखिर फ्रांस में ऐसा क्या हो गया है कि पूरा देश ठप पड़ा है?
देखिए, ये जो स्ट्राइक है ये काफ़ी समय से प्लान थी। बेसिकली दिस इज़ प्रेसिडेंट मैक्रों ने कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो बात की थी, खासकर के पेंशन रिफॉर्म्स और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जिसमें कि रेलवे यूनियन के वर्कर्स हैं उनके जो वर्किंग कंडीशन हैं उस पर रिफॉर्म्स की बात हुई थी, उसके खिलाफ ये स्ट्राइक हुई है। तो इन मेजर जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं और वर्किंग कंडीशन जो सरकारी वर्कर्स हैं खासकर के रेलवे यूनियन के वर्कर्स उनके जो मेजर रिफॉर्म्स हैं इसके खिलाफ ये स्ट्राइक हुई है। ये पहली बार पिछले 6-7 महीने में ऐसा एक्शन हुआ जिसमें कि न केवल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स लेकिन सरकारी जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जैसे नर्सेज हैं या स्कूल टीचर्स हैं और बाकी जो सरकारी महकमे के एम्प्लॉयज़ हैं उन सब ने मिल के एक स्ट्राइक की है। काफ़ी बड़ी स्ट्राइक है और सबसे बड़ी खबर आज ये है कि ये पहले एक ही दिन की स्ट्राइक होनी थी लेकिन अभी यूनियंस ने डिसाइड किया है कि उसे वो मंडे तक खींच के ले जाएंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे प्रेसिडेंट मैक्रों पे ज्यादा दबाव आएगा कि वो अपने रिफॉर्म्स को थोड़ा रोल बैक करें, कम करें या पूरी तरह से कैंसिल कर दें।
शुक्रिया रणवीर नैयर साहब इस ताज़ा जानकारी के लिए। और आज गुरुवार है यानी आपकी चिट्ठियों के जवाब देने का दिन, तो सुनिए अपने खतों के जवाब।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और साथ में हैं इंदु पांडे।
मेरा भी नमस्कार है।
तो इंदु जी, कहां से शुरुआत कर रहे हैं चिट्ठियों की?
चिट्ठियों की शुरुआत करते हैं तुलसी ढाकरे के ईमेल से। ये लिखते हैं कि एडमिरल नंदा ने यूं किया कराची को तबाह, बहुत बढ़िया जानकारी हमारी जाबाज सेना की जो कभी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटती। जब भी सैन्य कार्यवाही होती है उसकी जिम्मेदारी और सराहना रक्षा मंत्री को भी मिलती है। आप सबके नाम बढ़िया गुणगान करते हो पर बाबू जगजीवन राम का नाम रिपोर्ट में शामिल करना भी आपको गवारा नहीं, क्या बात है? कहीं वो अछूत जातियों के नेता थे इस कारण से तो नहीं?
तुलसी ढाकरे जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। रेहान फजल से जब मेरी बातचीत होगी तो
उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, अगर रक्षा मंत्री उस वक्त बाबू जगजीवन राम थे तो उनका जिक्र होना चाहिए था। लेकिन कई बार ये भी समझिए कि एक छोटी सी रिपोर्ट में बहुत सारी सूचनाएं दे पाना संभव नहीं होता है। हालांकि नाम तो दर्ज किया ही जा सकता था बाबू जगजीवन राम का, ये बात मैं ज़रूर रेहान फजल तक पहुँचाऊँगा।
और ये हैं मनीष कुमार यादव, लिखते हैं कि ये बिहार शरीफ निवासी हैं और बीबीसी हिंदी के नियमित श्रोता हैं, और आगे लिखा है कि मुझे बीबीसी से शिकायत है कि आधे घंटे का कार्यक्रम होने के बाद भी एक ही खबर को दोहराया जाता है। क्या आपके पास कोई खबर नहीं है? जो झारखंड चुनाव के बारे में जो खबर 2 दिसंबर को दिन भर में लेकर आए और वही 3 दिसंबर को नमस्कार भारत में लेकर के आए।
क्या बात है इंदू जी, आज आपने शुरुआत भी शिकायती चिट्ठी से की, दूसरी चिट्ठी भी शिकायती है, लगता है सब श्रोताओं को हमसे शिकायत हो गई है।
हम सुधार की ओर हैं।
हाँ मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल क्या है कि झारखंड में चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव की रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। उसमें से ऐसा होता है कि देर शाम तक बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं तो जो सुबह के कार्यक्रम में जिनको प्रसारित करना ज़रूरी होता है, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। एकदम रिपोर्ट तो पूरी तरह से हम पुनर्प्रसारित नहीं करते हैं, लेकिन जो विशेष कार्यक्रम होते हैं उनका पुनर्प्रसारण किया जाता है।
तो एक और शिकायत के लिए आप तैयार हो जाइए।
एक और शिकायत
जी, यह है विनोद कुमार, जिन्हें शिकायत है कि बीबीसी में उच्चारण दोष बहुत हो गया है। लिखते हैं, मैं बीबीसी काफ़ी सालों से सुनता आ रहा हूं। उस जमाने में शब्दों का उच्चारण बहुत शुद्ध होता था, अब तो एक शब्द को 3-4 बार कोशिश करके पढ़ा जाता है और बहुत से संवाददाता अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
विनोद कुमार जी, जो आपकी शिकायत है वो मेरी शिकायत भी है इत्तेफाक से। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जब पहले लोग रेडियो में काम करने आते थे तो वो पत्रकारिता की बैकग्राउंड से कम आते थे, उनमें से बहुत सारे लोग कवि होते थे, लेखक होते थे, कलाकार होते थे, या सिर्फ रेडियो के लिए ही वो स्पेशली काम करते थे। लेकिन अब यह है कि अलग अलग विधाओं से लोग आते हैं, पत्रकारिता से आते हैं, जो उच्चारण पर उतना ध्यान नहीं देते लेकिन लिखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अब यह नई तब्दीली हुई है, इसका एहसास कार्यक्रम सुन के होता होगा, लेकिन ये है तो स्वीकार्य नहीं, ये मैं कह सकता हूँ। सुधार की कोशिश, जैसा कि आपने इंदु जी कहा, हम करते रहेंगे।
लक्ष्मीपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से फारूक अब्दुल्ला फिजा ने लिखा है कि 3 दिसंबर को दिनभर में प्रसारित जज अर्चना पर सीटू तिवारी की रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी। सच कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
जी, मैं देख रहा हूँ कि फारूक अब्दुल्ला फिजा साहब के अलावा भी इस रिपोर्ट पर और भी तारीफी चिट्ठियां आई हैं। आगे अगर आप देखें तो
ये सीटू तिवारी को धन्यवाद करते हैं, कुवैत से मोहम्मद अमीरुद्दीन, और साथ में लिखा है अनिल जैन ने, लिखते हैं कि मैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति हूं और बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत हूं। 1995 से निरंतर मैं बीबीसी हिंदी को सुनता आ रहा हूं और ग्रेजुएशन के दौरान बीबीसी हिंदी ने इनकी काफी मदद की। अतः आज जब मैंने बीबीसी हिंदी पर पंकज सिन्हा, जो कि दृष्टिबाधित वकील हैं, उनके बारे में आर्टिकल पढ़ा तो इनका दिल गदगद हो गया।
ये सूर्यांशी पांडे जी, हाँ, उन्होंने ये मुलाकात की पंकज से, जो दृष्टिबाधित हैं, और इसके बावजूद उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपना एक मकाम हासिल किया है। वो वकील हैं, बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं, तो हम ढूंढते रहते हैं ऐसे लोगों को जिनके जीवन से प्रेरणा ली जा सके।
और ये हैं चुन्नू कुमार।
चुन्नू कुमार कहाँ से लिखते हैं?
ये कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर कल्चर का छात्र हूँ। बुधवार को सूर्यांशी पांडे ने जो वकील पंकज सिन्हा के जीवन की संक्षिप्त कहानी सुनाई, वो न केवल दृष्टिबाधित बल्कि अन्य छात्रों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक है।
बिल्कुल चुन्नू कुमार जी, आपने कार्यक्रम सुना, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आप रहते हैं, अपने दूसरे साथियों को भी बताइए कि इस तरह के कार्यक्रम हम लोग प्रसारित करते हैं। चलते चलते पता बता देता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि मौजूदा सरकार की गलतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक लड़की को 5 अभियुक्तों ने जिंदा जलाने की कोशिश की है। हमलावरों पर लड़की से सामूहिक बलात्कार करने का भी आरोप है। फ्रांस में देशव्यापी प्रदर्शनों की वजह से सामान्य जनजीवन बाधित है। वहां के लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रस्तावित यूनिवर्सल रिटायरमेंट सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पोलैंड में आपातकालीन कर्मियों ने एक घर के मलबे से 8 लोगों के शव निकाले हैं। ये 3 मंजिला घर एक संदिग्ध गैस धमाके में नष्ट हो गया था। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासन एजेंसी का कहना है कि मॉरिटानिया तट के पास नाव पलट जाने से कम से कम 58 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे कार्यक्रम नमस्कार भारत में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।